आज के आखिरी स्पीकर टोरंटो से जनाब आगा शेख मोहम्मद हसनैन को दावत दूंगा कि वो अपने आराइज से हमें मुस्तफीद फरमाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. First of all, I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the opportunity to come together to commemorate the martyrdom of Shaheed Sayyid al-Shuhada of Pakistan, Shaheed Arif Hussain al-Husseini. Definitely, it is a great blessing to remember the dead and the martyrs and the Shuhada. उसके साथ साथ मैं मुंतजमीन ऑर्गेनाइजर्स और बहुत सारी उन ऑर्गेनाइजेशन को जिन्हें साथ मिलकर इस प्रोग्राम को मुनक़द किया उन सब का शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद आलम से दुआ को हूँ कि आप सबको इस शहीद की राह का राहरा और इस शहीद की राह पर चलने वालों में से शुमार करें और हम सबको ये तौफीक दे कि ये कोशिश मुख्तसर सी मामूली सी नाचीज सी कोशिश आप सब की जानिब से हुई है और हमारी जानिब से हुई है शिरकत के उनवान से। खुदा इस सही को अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें शहदा की राह को समझने और शहदा की राह पर चलने वालों में से करार दे इंशाल्लाह ताला। यकीनन बहुत नमाज मगरिब का यहाँ पर टोरंटो के अंदर से शायद कम 10 मिनट से कम बाकी है। जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना था शायद तफसील के साथ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा लेकिन मुख्तसरन एक उनवान पर आपके साथ मुख्तसर से गुफ्तगू करता हूँ, कुछ आरइज आपके सामने पेश करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि आप इस सिलसिले पर गौर फिक्र करेंगे और इस सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक बार दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नुक्ता के जो मैं तमाम मुकदमात को हस्व करते हुए असली बहस पर आता हूँ, एक नुक्ता के जो शायद एक सवाल के जो खुद मेरे जहन के अंदर वो नस्ल के जिन्होंने शायद शहीद कैद के दौर को उस तरीके से नज़दीक से नहीं देखा उनके जहन के अंदर मौजूद है और शायद एक शिकवे के उनवान से एक अफसोस के उनवान से उन लोगों के जहनों के अंदर के जिन्होंने शहीद कैद के दौर को देखा सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी द वर्क ऑफ शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी एंड व्हाट आर द लेसंस दैट वी कैन लर्न इन द Islamic Ummah as a whole and Pakistan nation specifically learn from the very small period when Shaheed Qaid has a responsibility to become the leader of the Ummah of Pakistan, how he led this Ummah, what was the difference between him and his predecessors and the people who were his successor. उनकी ज़िंदगी इस मुख्तसर सी leadership के अंदर क्या ऐसी खसूसियत थी जो उनको मुनफरिद करती है माकबल के लीडर्स के साथ और माकबाद के लीडर्स के साथ और उससे हम क्या इम्पोर्टेंट लेसन लर्न कर सकते हैं वो काम जो हमें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और बिलखसूस नॉर्थ अमेरिका के अंदर एज अ मुस्लिम सोसाइटी या मुस्लिम उम्मा हम सब की जिम्मेदारी उससे अदा करना। शहीद कैद की कुछ किताबें की जो जमा हुई बाद में प्रिंट की गई हैं उसमें से एक किताब जिसके अंदर शहीद के पयाम नूर के नाम से जो प्रिंट हुई उसमें शहीद की कुछ नुकात को चीज़ों को जमा किया गया उसके अंदर एक इंटरव्यू है या शायद अगर मैं गलती ना कराऊँ या पयाम नूर के अंदर है या आदाब कारवान के अंदर उससे पहले शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने शहीद कैद के बारे में उससे सवाल किया गया और शहीद ने एक मुख्तसर सा इंटरव्यू दिया है शहीद कैद के बारे में यानी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद के को मारिफी करवाया कि शहीद कैद की खसूसियत क्या थी। उसमें शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने पाकिस्तानी तशय्यो के जो तकामुल का दौर था या तकामुल कहूँ या मैं जो जो टाइम जो सियासी सरगर्मियों का दौर था उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया और
आगा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर सकें वो नजर नहीं आ रहा था। शुक्रिया शुक्रिया माजर
एक वो दौर था कि जो शहीद कायद अरुसलम से पहले का दौर था, जिसमें आगा दहलवी, उसके बाद मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का दौर था, उसके बाद शहीद कायद का ये 4 साल का दौर था, और उसके बाद वो दौर आता है कि जो मतलब शहीद कायद के बाद मुख्तलिफ रहबर आते अफराद आते हैं, जो उन्होंने इन कामों को जो है कंटिन्यू किया मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, और इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ये कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक दौर था शहीद कायद का वो मुनफरिद है बाकी तमाम अतवार के साथ। अब हमारा सवाल ये है जिसको हम समझना चाहते हैं और जिसको मैं और आप जानना चाहते हैं कि फ़र्क क्या था शहीद कायद के इस दौर के अंदर और बाकी अदवार के अंदर, कि जिसकी आज तक मैं और आप याद मनाते हैं, याद करते हैं और उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। ऐसा नहीं हुआ था, गोल्डन पीरियड से हमारी कभी भी मुराद ये नहीं हुई थी जो लोग शहीद के साथ रह चुके थे। मैं शायद उस वक्त 7 या 8 साल का, एक बार शहीद कायद की बहुत दूर से मुझे ज्यारत का मौका नसीब हुआ, कराची के एक अजाखाना जहरा के नाम से एक अजाखाना है, हम रहते और अपनी मीठी उर्दू अहम के अंदर जब वो गुफ्तगू करते थे, वो मुझे चंद जुमले शहीद के फकत याद है जो मेरे कानों तक पहुंचे थे। इसके अलावा मैंने शहीद के उस दौर को उस शऊर के उस आलम के अंदर नहीं देखा कि शहीद ने किस तरह से कामों को अंजाम दिया, लेकिन जो शहीद के साथियों से, जो उनके अफराद थे, जो उनके जमाने के अंदर मौजूद थे, उनसे जो बातें हुई, उसे अंदाज़ा होता है कि बहुत सख्त दौर था, बहुत ट्रबल्स, बहुत ही मुश्किल शहीद कायद ने देखी। शहीद के कुछ जुमलों से भी इस बात को वाजह तौर पर नज़र आता है कि शहीद किस मुश्किल के दौर से गुजरे थे। लेकिन वो जो गोल्डन पीरियड में और आप कहते हैं, वो इस खसूसियत की वजह से कहते हैं कि जो शहीद ने वो रूह, वो स्पिरिट के जो उस तंजीम के अंदर, उस तशयुक शिया उम्मत के अंदर, इस्लामिक उम्मत के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर वो रूह जो डाली थी, वो जो हमें लर्न करना है। वो लेसन क्या है जो हम लर्न करना चाहते हैं? वो एक नज्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मुनज्जम अंदाज में कामों को अंजाम देना है। ये शहीद से पहले मौजूद नहीं था, शहीद के बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, जिसके असरात मैंने और आपने देखे, लेकिन शहीद ने उसे बहुत ही मिनिमल से, बहुत ही कम से शुरू किया और उस ग्राफ को एक हद तक अपने कमाल तक पहुंचाया, जो उनकी तवानाई के अंदर मौजूद था। और अगर वो सिलसिला कंटिन्यू रहता तो आज पाकिस्तानी तशय्यो किसी और मकाम पर मैं और आप उसे देख रहे होते। और वो नुकता कि जो सूरह आले इमरान की आखिरी आयत की जो सन्नामा कलाम है मैंने आपके सामने पेश की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इसबिरू वसाबिरू वराबितू, ये नुकता मुझे और आपको समझना है कि मैं और आप वो जो तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन या रहबर जैसे तश्कीलात के नाम से ताबीर फरमाते हैं, जब तक मैं और आप उस अंदाज में अपने आप को मुनज्जम नहीं करेंगे, मैं और आप कभी भी रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर पाते। नुकता की जो खुद शहीद कायद की वीडियो जो आपके सामने चली थी, कभी भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि ये नज्म के जो अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो तंजीम के उनवान से हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के उनवान से हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के उनवान से हो, ये बुत नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये फकत और फकत वसीला है उस हदफ के हुसूल का। ये वो राबिता है जो उम्मत को तश्कील देता है, और अगर ये राबिता तश्कील नहीं अंजाम दिया गया तो जो हेयर एंड देयर आपको कोई ना कोई अमल अंजाम दिए जाते हैं, कोई काम आपको नजर आते हैं, वो लॉन्ग टर्म में तासीर उसकी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं और आप अपने आप को मुनज्जम कर पाते हैं तो यकीन इसकी इस नतीजे को मैं और आप हासिल कर सकते हैं। मैं फकत रहबर के एक जुमले से अपनी बात को खत्म कर दूं, क्योंकि मगरिब का टाइम भी हो रहा है। रहबर अपनी एक तकरीर के अंदर जुमला फरमाते हैं, तश्कीलात यानी ऑर्गेनाइजेशन यकी अस फराइज हर ग्रोह मरदुमी अस के यक हदफीरा दुम्बाल मिकनत, वो ग्रोह, वो इज्तिमा, वो लोगों का, अफराद का मजमुआ कि जो एक हदफ की जानिब बढ़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी तश्कीलात को, ऑर्गेनाइजेशन को अंजाम दे। अब वो खुद एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय तश्कीलात, व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तश्कीलात यानि नज्म, तश्कीलात यानि इर्तिबात व इत्तिसाल व जंजीरई कारकर्दन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कामों के अंदर नज्म होना चाहिए, आपके काम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, आप मरबूत होने चाहिए, मुतसिल होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका के पास में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें अगर मुतसिल नहीं होगी, हम आपस में इत्तेसाल नहीं होगा, हम आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, हम कभी भी कोई काम देर पा और लॉन्ग टर्म अंजाम नहीं दे सकते। मैंने कहा कि शायद हेयर एंड देयर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी कि जो जाहिर में मुझे और आपको खूबसूरत लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो तासीर गुजार नहीं है, जब तक मैं और आप एक मुनज्जम کلام کو جو ہے تشکیل نہیں دے پاتے. اور اس میں میں نے کہا کہ شاید شہید قائد نے اپنی تقریر میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک شخص کو, ایک گروہ کو بلیم کریں یا ان کی ذمہ داری لگائیں کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں. ہم سب کلکم رائے و کلکم مسئول, ہم سب کے سب مسئول ہیں, ہم سب کے پاس, سب کے پاس رسپانسبلٹی ہے اور ہم سب اس بات کے رسپانسبل ہیں کہ ہمیں اس کام کو اپنے توانائی کے اندر اس کام کو انجام دینا ہے. میں اپنی بات میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا, دعا کے ساتھ کہ یہ ایک مختصر سا لیسن کہ جو ہم شہید قائد کی زندگی سے لرن کر سکتے ہیں, اس شہید کو اپنے لیے اسوہ قرار دے سکتے ہیں اور فقط تاریخ کے جھرکوں کے اندر, تاریخ کے صفوں صفحات کے اندر جو شہید قائد کو نہیں دیکھتے بلکہ آج کے دور میں بلا تحتبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء, ان کو اپنی زندگی کے اندر حی مانیں, ان کو اپنی زندگی کے اندر ناظر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کا جو میسج تھا, ان کا جو کام تھا وہ کہاں ادھورا ہے اور کہاں ہمیں اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس مشن کو ہم, میں اور آپ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. خدا وند عالم سے دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام شہدا بالخصوص سید الشہدا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ اور مقصد اور مکتب کو صحیح معنوں میں سمجھ دیں, اس کی ترویج و اشاعت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.